बेसिकली संसार में दो तरह के लोग हैं, जो पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक जो सूर्य है देवी देवता जो है, जो देवी देवता है सूर्य है जो, और जो भगवान के भक्त हैं उनको देवी देवता या सूर्य कहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो भगवान के विरुद्ध हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनको असुर बोलते हैं। तो दो ही तरह के लोग हैं कुल मिलाकर, है ना। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में करोड़ों तरह के लोग हैं, लेकिन इनको सब लोगों को हम दो भागों में डाल सकते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो इस भौतिक संसार में बहुत सारे गुण हैं। भगवत गीता में कृष्ण बहुत सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि तीक्षा, सहनशीलता, करुणा, साफ सफाई, दान, शौच, है ना, दान जो है दान देना और तपस्या करना, ऑस्टेरिटी, सो ये जो सारे गुण हैं ये भगवान को अच्छे लगते हैं, भगवान को आकर्षित करते हैं। एक और गुण है डिवोशन, भक्ति, बिल्कुल अलग कैटेगरी है। सो अगर बात की जाए कि भगवान को कौन सा गुण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कृष्ण बोले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिवोशन, भक्ति है सबसे ज्यादा। और कृष्ण ने ये बात बार 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 कृष्ण ने बात प्रूव की, जब हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़ के विदुर जी के घर केले के छिलके खा लिए, है ना। तो विदुर जी ने कहा मुझे पता ही नहीं चला मैंने केले के छिलके खा दिए, कृष्ण ने कहा मुझे भी पता नहीं चला मैंने केले के छिलके खा लिए। डिवोशन है पत्र पुष्पम फलम तोयम योग थी। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप अगर कोई व्यक्ति प्रेम भाव से, डिवोशन से, भक्ति से अगर मुझे कुछ ऑफर करेगा, पत्रम तुलसी का पत्र ऑफर करेगा, पुष्पम पुष्प फूल ऑफर करेगा, पत्रम पुष्पम फलम कोई फल ऑफर करेगा, आमतौर पर भगवान को कोशिश करनी चाहिए जो सीजनल फ्रूट है, जो उस जिस फल का मौसम चल रहा है वही फल ऑफर करना चाहिए, बेमौसमी फल भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए। बेमौसमी फल जो है वो विश्वामित्र का दिमाग चलता है, विश्वामित्र ने एक और सृष्टि, एक अल्टरनेट सृष्टि बनाने की कोशिश की थी, है ना। तो अच्छा नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लगता जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जिस मौसम में जो फ्रूट है वो भगवान को ऑफर करो, सस्ता भी होता है भगवान को अच्छा भी होता है। सो पत्रम पुष्पम फलम तो या पानी ऑफर करो, तो पत्रम समझ में आता है, फल समझ में आता है, पानी समझ में आता है, पुष्प समझ में नहीं आता। कृष्ण कह रहे हैं आप प्रेम से ऑफर करो, मैं ग्रहण कर लूंगा, भगवान खा लेते हैं, भगवान इतने विचलित हो जाते हैं, इतने भावावेश में आ जाते हैं कि अगर कोई बहुत प्रेम से भगवान को एक फूल भी ऑफर करे भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, एक्चुअली में खा लेते हैं। सुदामा जी आए थे, सुदामा जी टूटे टूटे सूखे चावल ले आए थे, है ना, तो कृष्ण जबरदस्ती खा लिया, और ऐसा नहीं कि जैसे सपोज हम किसी गरीब रिश्तेदार के घर चले जाएं, तो उसने सूखा वूखा सामान ला कर रखा तो हम जरा सा लेते हैं, हो जा हो जा। कृष्ण ऐसे नहीं किया, कृष्ण ऐसे मुट्ठी भरी और खाई, कृष्ण का बहुत मजा आया, कृष्ण दोबारा मुट्ठी भरी, तो लक्ष्मी जी ने द्रौपदी देवी ने हाथ पकड़ लिया, प्लीज हमारे लिए भी कुछ नहीं है। तो कृष्ण को अच्छा लगता है, और चैतन्य महाप्रभु ने तो बार बार दिखाया अपने लीला आचरण के माध्यम से इतना महत्वपूर्ण है भक्ति। और कोई भी गुण रहेंगे अच्छे हैं गुण, लेकिन भगवान को आकर्षित नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आकर श्रीवास पंडित है, जो पंच तत्व में एक नाम है श्रीवास पंडित है ना, वो श्रीमती राधा रानी के अवतार है। तो श्रीवास पंडित श्रीमती राधा नारद गदाधर पंडित है श्रीमती राधा रानी, सो जो गदाधर पंडित है श्रीवास पंडित है वो नारद मुनि के लिए अवतार है। सो उनके घर में चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे और पूरी रात कीर्तन करते थे, पूरी रात और डांस करते थे और दरवाजे बंद करके करते थे ताकि कोई बाह्य व्यक्ति न आ जाए। एक बार शिवास पंडित की सास वो छुप गई वहां पर, कोने में छुप गई, आगे सामान वामान दिखा दिया, पीछे छुप गई, देखो करते क्या है। चैतन्य महाप्रभु आए, डांस शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई बाहरी व्यक्ति है, मुझे वो सुख नहीं मिल रहा। तो सबने ढूंढा तो एक कोने से कौन मिला, शिवास पंडित की सास मिली। तो शिवास पंडित ने यह नहीं सोचा मेरी सास है, तो बालों से कपड़ा बाहर रख दिया, माफी मांगी चैतन्य महाप्रभु से कि मुझे अफसोस है आपके सुख में बाधा पहुंची। एक बार एक ब्राह्मण आया, तो ब्राह्मण ने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि श्रीवास पंडित को बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य देखना चाहता हूँ। श्रीवास पंडित ने कहा नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु कोई बाहरी व्यक्ति आए, चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता। तो उसने बोला मैं बहुत तपस्वी हूं। तो श्रीवास पंडित ने बोला अच्छा क्या तपस्या करते हो आप। उसने बोला कि मैंने जीवन भर दूध पिया है, मैं दुग्ध पान के अलावा मैंने कुछ आज तक खाया नहीं, तो मेरी तपस्या केवल एक्चुअली में मतलब बड़ा मुश्किल है ना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ वृंदावन में रहते हैं वो साधु जो सिर्फ दूध ही पीते हैं कार्य। तो उन्होंने उसने ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत तपस्वी हूँ, तो प्लीज 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 मुझे दर्शन करने। तो श्रीवास पंडित का दिल पसीज गया, उन्होंने कहा ओके फाइन छुप जाओ, वो कोने में छुपा लिया। चैतन्य महाप्रभु आए, नृत्य किया, तो बोल रहे सुख नहीं मिल रहा कोई बाहरी व्यक्ति है। तो श्रीवास पंडित ने कहा हाँ एक दूध पीने वाला ब्राह्मण है, उसको मैंने यहाँ पे छुपा दिया था, उसको बहुत इच्छा थी आपका नृत्य और कीर्तन देखने की। चैतन्य महाप्रभु ने बाहर कर उसे, तो उसको शिवास पंडित निकाल के बाहर कोने से निकाल कर लेके आए। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा, मैंने देखो मैंने बहुत तपस्या की, मैंने सिर्फ दूध ही पिया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे दूध पीने वाले ब्राह्मण बेटा बाहर निकल जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तपस्या से आप आकर्षित नहीं कर सकते, आप तपस्या से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। भगवान को आकर्षित करने का एक ही तरीका है, वो है डिवोशन। तो उसने कहा प्लीज आप मुझे अपने शरण में रखो, मैं जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने उसको फाइनली परमिशन दे दिया कि ओके फाइन आप इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए, रघुनाथ दास गोस्वामी के लक्ष्य सड़े हुए चावल खाए। जब चावल सड़ जाते हैं बहुत दुर्गंध आती है उसमें से, सूंघ लिया तो एकदम उल्टी आ जाती है ना। लोग ऐसे जो चावल है खराब हो जाते हैं गायों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, जब थोड़े से बासी हो जाए चावल तो गाय आती है खा लेती है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी वो चावल उठा के खाते थे जो गाय भी नहीं खाती थी, कौन खाएगा इसको। वो चावल लेके धो के नमक डाल के खाया। हमें तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम तपस्या कर रहे हैं, एक्चुअली में हम तपस्या ना कर रहे हैं ना कर पाएंगे। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु एक बार सब भक्तों के साथ बैठे थे तो नवद्वीप में, हम सबको पता है चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे ना, मायापुर नवद्वीप है ना, सुने ना कितने लोगों ने सुना। तो जो मायापुर है नवद्वीप, ये वेस्ट बंगाल में जगह है नवद्वीप, और नवद्वीप में मायापुर जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, और उसके आसपास मायापुर के साथ आसपास 8 द्वीप और हैं तो मिलकर 9 द्वीप बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस सारे जगह पर बहुत सारे लीलाएं की। हमने भी नवंबर 2018 का प्रोजेक्ट बनाया है वहां जाने के लिए, देखो क्या होता है। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रह रहे थे, वहां पे एक और भक्त रहते थे, किसी को पता भी नहीं था कि डिवोटी है, उसका नाम था शुक्लांबर ब्रह्मचारी। आपने सुना कितने लोगों ने नाम सुना है, बस शुक्लांबर ब्रह्मचारी। क्या नाम बोला मैंने, शुक्लांबर ब्रह्मचारी। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने व्रत लिया था कि गरीबी में रहेंगे, घर घर जाते थे उनके झोला टंगा होता था, दो ही झोले फेमस हैं, एक शुक्लांबर ब्रह्मचारी की झोली और दूसरी राघवेंद्र राघव पंडित की झोली, उसको बोलते थे राघवेंद्र झाली। तो वो राघव पंडित थे, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए और उनकी सिस्टर दोनों मिलकर चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत सारे डिशेस पकवान बना के लेके जाते थे। जब वो हर साल पूरी जाते थे वेस्ट बंगाल से, और चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई थी अपने सेवक को। चैतन्य महाप्रभु के सेवक का क्या नाम है, गोविंद, गोविंद हाँ गोविंद, चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट थे गोविंद है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये जो पकवान राघव पंडित और जो उसकी सिस्टर बना के लाई है, ये मुझे पूरा साल तुम थोड़ा थोड़ा दिया है, बाकी सब बांट देते थे, सब ग्रहण हो गया, लेकिन वो एक झोली ऐसी थी कि चैतन्य महाप्रभु पूरा साल उस साल का आस्वादन करते थे। सो शुक्लांबर ब्रह्मचारी झोली डाल के जाते थे, घर घर जाते थे और भिक्षा मांगते थे। वेस्ट बंगाल में काफी गरीबी है एक्चुअली में आप देखो तो, और पश्चिमी बंगाल में गांवों के अंदर आमतौर पर जो सबसे मतलब बेकार सूखी सड़ी हुई चीज है वही भिक्षा मांगने वाले को दी जाती है। तो नेचुरली जब शुक्लांबर ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने जाते थे मधुबनी करते थे तो उनको कोई छप्पर भोग तो देगा नहीं, कोई देसी घी के पराठे नहीं देता था, सूखा टूटे हुए चावल चिवड़ा ये सामान मिलता था। तो वो लेके जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु सामने से आ गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी झोली छीनी, तो उस झोली में 10 घरों की दीक्षा थी, ऐसा चैतन्य भागवत में लिखा है। 10 घरों से दीक्षा मांग के आए थे, ठीक ठाक सामान था। चैतन्य महाप्रभु पूरा चावल, जो टूटे हुए चावल थे, चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण कर लिया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी दुख के मारे जमीन पर गिर गया, उसने कहा मैं बर्बाद हो गया। आप सोचोगे कि उसकी झोली छीन गई थी, बर्बाद हो गया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने कहा कि इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्वामी को मैंने टूटे हुए चावल अर्पित कर दिए, उनको ये चावल खाने पड़ गए, मेरा जीवन खत्म हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे पता है तुम्हारी क्या महिमा है, मुझे पता है कि तुम में कितने गुण हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर तुम खाते हो तो मैं खाता हूं, तुम चलते हो तो मैं चलता हूं, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम जाते हो घर घर, घर घर जाते हो तुम लोगों पर उपकार करने के लिए, लोग अंधकार में अज्ञान कर रहे हैं, तुम जाते हो भिक्षा मांगने के लिए, कृष्ण कथा करते हो, लोगों से भिक्षा लेते हो, लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये जो पदार्थ दे रहे हैं तुम कृष्ण को भोग लगाओगे, उनको अज्ञान सुकृति मिल जाती है, उनको पता नहीं है। सो तुम लेने जा रहे हो, मधुबनी करने जा रहे हो, अपने लिए नहीं जा रहे हो, तुम कृष्ण के लिए जा रहे हो, तुम लोगों को कृष्ण की कृपा बांटने के लिए घर में जा रहे हो। तो जो भक्त है वो शरण नहीं करते लोगों से भिक्षा मांगते, भगवान की सेवा के लिए भिक्षा मांगने में क्या शरण। आप मैनेजर हो सकते हो, जनरल मैनेजर हो सकते हो, आप कोई बहुत बड़े शोरूम के मालिक हो सकते हो, अपने घर में वो तो कृष्ण के दास, एकला ईश्वर कृष्णा और सब वृत्तियां, बाकी सब वृत्तियां हैं, नौकर हैं। जितनी जल्दी हम जान लेंगे कि हम नौकर हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा। और जो नौकर है उसका एक ही काम होता है कि स्वामी की सेवा के लिए कुछ भी करना पड़े संकोच नहीं करना। आप लोग भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए किसी से किसी के पास जाना पड़े, भिक्षा मांगनी पड़े, संकोच मत करना। कृष्ण को सारे गुणों में से सबसे ज्यादा अच्छा गुण लगता है कि कितना समर्पण है। कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सुतः भजाम्यहम्, जो जितनी मात्रा में मुझे समर्पण करेगा उतनी मात्रा में वो मेरी महिमा को जान पाएगा, मेरी मधुरता को उतनी मात्रा में जान पाएगा। तो क्या हम सिर्फ भक्ति का भक्ति को पोषित करें, तपस्या करुणा इत्यादि जो सहनशीलता ये जो गुण है ये गुण का कुछ लाभ नहीं है, इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति उदय हो गई उसके शरीर में देवी देवताओं के सारे गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है। एक भक्त का पूरा जो फोकस है, ध्यान है, वो भक्ति में होता है, भगवान की सेवा में होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भक्त तपस्या नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि भक्त सत्यवादी नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं है कि भक्त सहनशील नहीं होता, करुणामय नहीं होता, शुचि मुचि का ध्यान नहीं रखता। सब ध्यान अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको लगता है ये भी भक्ति का एक अंग है, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। जितनी हम अपने जीवन में इस बात को लेकर आएंगे प्रधानता से, ये भगवान के निमित्त हर कार्य करना जो है, जितनी हम ये बात अपनी चेतना में लेके आएंगे और हम बार बार सोचेंगे, सपोज आप ब्रश कर रहे हो, आप सोचो मैं भगवान के लिए ब्रश कर रहा हूं या भगवान के लिए ब्रश कर रही हूं, कि जब मेरा मुंह साफ हो जाएगा मैं भगवान का नाम जपूंगा। नहा रहे हो भगवान के लिए नहा रहे हो, भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भोजन खा रहे हैं भगवान के लिए भोजन खा रहे हैं, ताकि हमारा जो शरीर है उसका निर्वाह होता रहे और इस शरीर रूपी यंत्र को भगवान की सेवा में हम अच्छे से लगा सकें। आप ऑफिस जा रहे हो भगवान के लिए जा रहे हो, अपने दुकान पर जा रहे हो भगवान के लिए जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो पहले से सोचने की कोशिश करो, आसान नहीं है, भगवान को भूलना आसान है, हमारी प्रवृत्ति है भगवान को भूलेंगी, भगवान को याद करने के लिए हमें सामने से प्रयास करना पड़ेगा। कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे निकट समानकारे जपतिया करे, हम इस भौतिक संसार में आए इसलिए क्योंकि हम कृष्ण बहिर्मुख है, हम कृष्ण से अलग रहना चाहते हैं, कृष्ण को याद नहीं करना चाहते, कृष्ण को भूलना हमारा स्वभाव हमारी आदत बन चुकी है। इस आदत को जो करोड़ों जन्म से हमारे साथ चिपकी हुई है, इस आदत को बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार 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 हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार अपने मन को समझाना पड़ेगा कि कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण के निमित्त कार्य करो, जो भी काम कर रहे हो कृष्ण के निमित्त कर रहे हो। मन नहीं मानेगा ये बात, लेकिन जब हम बार बार प्रयास करेंगे, हम अपनी बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा जब हम निरोध कर देंगे, अपने मन को रोक देंगे, उसको इधर उधर नहीं भटकने देंगे, जिस चीज में मन में जिस चीज जिस वस्तु में हमारे मन की आसक्ति है, स्वाभाविक रूप से हमारा मन जिस वस्तु में भाग रहा है, हम उस वस्तु के प्रति वैराग्य लेके आ जाएंगे अभ्यास के द्वारा। और कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं अभ्यास हेतु कौन्तेय वैराग्यं च विगृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य अगर मन को नियंत्रित करना है, दो चीजें करोगे, प्रयास करोगे निरंतर लगातार सजग होकर सतर्क होकर अगर प्रयास करोगे लगातार, तो काफी समय बीत जाएगा, धीरे धीरे जब मन को पता चल जाएगा यार ये नहीं मानने वाला, तो मन आपके काबू में आ जाएगा और कोई तरीका नहीं। दो नावों में पैर नहीं रख सकते, भौतिक जगत में आ सकती कृष्ण में आ सकती, साथ साथ कभी नहीं चलेगी, जो कहते हैं गलत कहते हैं, बकवास कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम्मेदारी से भाग जाओ, जो जिम्मेदारियां हैं वो एक भक्त अच्छे से निर्वाह करता है, ताकि कोई लांछन ना लगाए एक कृष्ण भक्त है सही से काम नहीं करता भगाओ उसको। तो जो कृष्ण भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, वो अच्छे से जॉब करते हैं, अच्छे से बिजनेस करते हैं, अच्छे से हर व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, लेकिन ममत्व की भावना नहीं होती, निर्मम होते हैं आसक्ति नहीं होती, स्वामित्व की भावना नहीं होती, कोई उसमें से स्वार्थ सिद्धि होगी ऐसी भावना नहीं होती, कर्तव्य समझ कर उसका निर्वाह करते हैं। और प्लीज आप ये जान लो, अगर हम कर्तव्य समझ के निर्वाह करेंगे जितनी भी हम कार्य करते हैं, आप देख लेना आपको कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी आपका मन विचलित नहीं। मन विचलित तभी होता है, मन दुखी तभी होता है जब हमारी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से हमारी आसक्ति होती है। और जब उस वस्तु, विषय, घटना, व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो इमीडिएटली तुरंत हमारा मन दुखी हो जाता है। अगर वो आसक्ति नहीं होगी आपका मन दुखी नहीं होगा, आप समभाव से उसको स्वीकार कर लोगे, झेल लोगे। और जब मन व्यतीत नहीं होगा, मन व्यतीत अगर हो जाए वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, वो तो शोक में डूब जाएगा। एक दुखी व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता, वो तो जिस जो उसके दुख का कारण है उसी पे ध्यान बार बार जाता रहेगा उसका। जब तक उसमें आसक्ति खत्म नहीं होगी वो भगवान की और ध्यान जा ही नहीं सकता उसका। तो ऐसा नहीं है कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी सिर्फ भक्ति कर रहे थे, तपस्या, सहनशीलता इत्यादि जितने भी गुण हैं स्वतः उनमें विराजमान थे, कोई उसमें संदेह नहीं, उनके चरित्र में कोई नुक्स, कोई खोट, कोई कमी ढूंढने से भी नहीं ढूंढी जा सकती। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही संयम से रह रहे थे, बहुत ही मित भाषी थे, मित भूख थे, बहुत कम खा रहे थे, बहुत कम पी रहे थे, बहुत कम सो रहे थे। तो क्या ये तपस्या नहीं है? लेकिन वो तपस्या को भक्ति योग के अंदर सम्मिलित करके उसका पालन कर रहे थे। अलग से तपस्या हिमालय पे चले गए, एक हाथ खड़ा कर दिया, वो कई सालों तो हाथ ही खड़ा किया, अरे उससे क्या होगा। ये जानने के लिए हिमालय पर्वत पर बहुत सारे ऐसे योगी हैं, एक हाथ ऐसे खड़ा रख लिया, और अगर आप कई साल तक हाथ ऐसे खड़ा रखोगे पूरा ही जाम हो जाएगा, आप फिर उसको नीचे गिराना चाहोगे नीचे नहीं गिरेगा, फिक्स हो जाएगा, वो सीमेंटेड हो जाएगा। और बहुत ही मुश्किल है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। एक हाथ ऐसे खड़ा किया है, अब आप उस हाथ को यूज नहीं कर सकते, तो खड़ा है उसे क्या यूज करोगे, जितने आपको बाकी के काम करने हैं एक ही हाथ से करने हैं, ढंग से सो नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम है। क्यों कर रहे हो, कोई उनसे पूछता है आप क्यों कर रहे हो, हम ये इसलिए कर रहे हैं ये जानने के लिए, ये रियलाइज करने के लिए, अनुभव करने के लिए कि हम शरीर नहीं आ पाए, बस ये जानने के लिए इतनी भयंकर तपस्याएं करते हैं। भक्त बहुत ही आसानी से ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं भगवान की भक्ति से। कृष्ण कह रहे तदामी बुद्धि होगा, मैं वो इंटेलिजेंस दूंगा जो जानने योग्य है, जो ज्ञातव्य है। इस संसार में जो भी जानने योग्य वस्तु है आपको पता चल जाएगी देरी के ऊपर। सो हमारा फोकस भक्ति में होना चाहिए, लेकिन भक्ति करने का मतलब यह नहीं कि हम साथ साथ भोग भी करते रहे। तपस्या, सहनशीलता इत्यादि जो गुण है वो स्वाभाविक रूप से हम उसका पालन करेंगे, लेकिन जो हम एफर्ट करते हैं, जो प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान का स्मरण करने में, भगवान की सेवा करने के नए नए तरीके ढूंढने में, मैं अधिक से अधिक भगवान की किस प्रकार से सेवा करें। अगर हम इस तरह से अपना जीवन बिताएंगे इसमें कोई शंका नहीं है, भगवान को सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने इतिहास में आकर्षित किया है, हम भी कर सकते हैं प्रभुपाद की कृपा से। अगर हम प्रभुपाद के दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि हम भी शिष्य राधा कृष्ण का ध्यान अपनी ओर कभी आकर्षित कर पाएंगे। हरे कृष्ण।